लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत धन्य कार्लो अकुतिस की जीवनी के दूसरे भाग पर प्रकाश डाल रहे हैं। मैं पोप के लिए और कलीसिया के लिए जो भी कष्ट सहना पड़े उसे प्रभु को अर्पित करता हूँ, ताकि मुझे शोधक अग्नि में जाना ना पड़े और सीधे स्वर्ग जा सकूं। धन्य कार्लो अकुतिस अगले 7 सितंबर को संत घोषित किए जाएंगे। वे 21वीं सदी के पहले संत होंगे। अकुतिस दूसरों के समान हमारे समय के एक किशोर थे। स्कूल में मित्रों के साथ समय व्यतीत करते थे और उन्होंने पौत्र यूखरिस्त, माता मरियम एवं पौत्र रोजरी माला विनती से प्रेम किया। वे एक धर्म शिक्षक थे जिन्होंने दूसरे बच्चों के सामने विश्वास की सच्चाई प्रकट की। पिछले कार्यक्रम में हमने धन्य कार्लो अकुतिस के आरंभिक दिनों के बारे सुना था। आज हम उनकी बीमारी और मृत्यु के समय के बारे जानेंगे। अक्टूबर 2006 में कार्लो अकुतिस एक गंभीर बीमारी के शिकार हुए। उन्हें M3 ल्यूकेमिया हो गया, जिससे शुरू में फ्लू समझ लिया गया था। उन्हें मिलान के डी मार्क क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी बिगड़ती हालत के कारण उन्हें मोन्सा के सन जेराल्डो अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जो इस प्रकार के ल्यूकेमिया के लिए एक विशेष केंद्र है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो आमतौर पर अस्थि मज्जा में शुरू होता है और बड़ी संख्या में असामान्य रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती, जिन्हें ल्यूकेमिया कोशिकाएं कहा जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले कार्लो ने अपना जीवन पोप के लिए, कलीसिया के लिए और स्वर्ग जाने के लिए प्रभु को समर्पित किया। अस्पताल में एक पुरोहित ने उन्हें रोगियों का संस्कार दिया। उनका इलाज कर रहे कुछ नर्स और डॉक्टर उनकी बीमारी और पीड़ा को स्वीकार करने की उनकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। 11 अक्टूबर 2006 को उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो गई और 12 अक्टूबर को सुबह 7:45 उनके हृदय की गति रुक गई। यह खबर उनके सहपाठियों और उनके जानने वालों के बीच तुरंत फैल गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर में दर्शन के लिए रखा गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। उनका अंतिम संस्कार 14 अक्टूबर 2006 को मिलान के संत मरिया सेग्रेता गिरजाघर में संपन्न हुआ। उनके पार्थिव शरीर को तेरनेंगो स्थित पारिवारिक कब्र में दफनाया गया। उसके बाद फरवरी 2007 में संत फ्रांसिस शहर में रहने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इसे असीसी के कब्रस्थान में स्थानांतरित किया गया और 5-6 अप्रैल 2019 को कार्लो के पौत्र अवशेष को असीसी के संत मरिया मजोरे गिरजाघर के तीर्थस्थल में लाया गया। धन्य कार्लो अकुतिस ने पौत्र यूखरिस्त में ख्रिस्त की उपस्थिति में मानव के लिए ईश्वर के प्रेम को पहचानना सीखा। उसमें उन्होंने ईश्वर की कृपा के खजाने तक पहुंचने का त्वरित रास्ता पाया और इसने उन्हें एक विश्वासी शिष्य बनाया। यीशु के प्रेम में वे ईश्वर के साथ मित्रता के अकथनीय आनंद को दुनिया के लिए घोषित करने से कभी नहीं थकते थे। पौत्र संस्कार में यीशु ख्रिस्त की सच्ची उपस्थिति कार्लो के लिए एक वास्तविकता थी, जहां से उनके लिए हर अच्छी चीज उत्पन्न हुई। यह इस बात की भी गारंटी थी कि मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ तक कि परीक्षा के सबसे कठिन क्षणों में भी। इसलिए उनके दिन ख्रिस्त्याग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गए और जब भी संभव होता वे पौत्र यूखरिस्त की आराधना के लिए भी रुकते थे। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने सुसमाचारी मूल्यों का निरंतर अभ्यास किया, न केवल अपने शब्दों से बल्कि सबसे बढ़कर अपने जीवन की गवाही के द्वारा मसीह की घोषणा की। एक युवा लोकधर्मी के रूप में वे कई समर्पित व्यक्तियों और पुरोहितों में ख्रिस्तीय उत्साह एवं अभ्यास को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु येसु को समर्पित कर दिया, जिन्हें वे अपने निकट एवं उपस्थित महसूस करते थे। वे शैक्षणिक जगत में सभी स्तरों के छात्रों के लिए एक आदर्श साक्षी थे। कार्लो ने जो मुख्य विरासत छोड़ी, खासकर नई पीढ़ियों के लिए, वह है सुसमाचार के मूल्यों के साथ उनके जीवन की संगति। विश्वास के रहस्य को दूसरों के साथ बांटने की अपनी क्षमता के कारण ही कार्लो को उन सभी वातावरणों में एक सच्चे प्रेरित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वे रहते थे, जैसे परिवार, स्कूल, खाली समय, यात्रा और खेल इत्यादि। ख्रिस्त के रहस्य में शरीर के रहस्य को गहराई से जीकर उन्होंने सभी को दानशीलता का अभ्यास करने की आवश्यकता दिखलाई। वास्तव में उन्होंने विभिन्न जातियों, भाषाओं और परंपराओं के लोगों के बीच स्वीकृति और शांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने हमें दुनिया की सड़कों पर मिलने वाले बेघर और सबसे गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंसा, युद्ध एवं संघर्षों के बावजूद, यहाँ तक कि परिवारों के भीतर भी, कार्लो ने मसीह और उनके सुसमाचार को चुनने और खुद को मरियम की मातृमय संरक्षण में सौंपने का प्रस्ताव रखा। हर परिवेश में ख्रिस्त के एक सच्चे साक्षी के रूप में कार्लो अकुतिस का जीवन आज के युवाओं के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। वास्तव में कार्लो द्वारा नई पीढ़ियों को दिया गया संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सामयिक है। यह हमें इस संसार तक सीमित न रहकर अपने जीवन को उस वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए आमंत्रित करता है जो इस संसार से आरंभ होती और परलोक में पूर्णता प्राप्त करेगी। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत धन्य कार्लो अकुतिस की जीवनी के दूसरे भाग पर चर्चा सुन रहे थे। इसके अगले भाग को अगले सप्ताह सुनेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका भाई का कर्ज। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, एक समय था जब पिता को पुत्री संतान के नाम से खीज होती थी, उसे गोद में उठाने से झिझकते थे, लेकिन आज कारण भी बदले हैं और हालात भी। आज बेटियां घर की चार दीवारी में चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, पिता का झुकाव घर के चिराग से ज्यादा घर की रोशनी पर होने लगा है, यानी बेटी पर। बेटी पिता के लिए एक बोझ या जिम्मेदारी बनकर नहीं रह गई है, बल्कि पिता की शान और पहचान का हिस्सा बन रही है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बेटियों को अवसर मिले तो वे विजय फताका न फहरा रही हों। ऐसे में बेटियां बेटे का बेहतर विकल्प साबित हो रही हैं। बेटियों के प्रति पिताओं के बढ़ते लगाव के कारण वर्तमान में बढ़ते बेटों से निराशा तथा बेटियों की तरक्की भी है। ऐसा नहीं है कि बेटे तरक्की नहीं कर रहे या वह किसी लायक नहीं, लेकिन बेटों की जीवन शैली, उनकी प्राथमिकताएं एवं जरूरत आदि बदल गई है। वे अपने शौक और अपनी दुनिया तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण वे लापरवाह और गैर जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार वालों को दिखने लगा है कि भविष्य में बेटों से कुछ खास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में बेटियां न सिर्फ उम्मीद का सहारा नजर आ रही हैं, बल्कि पिता एवं घर परिवार को शान पहचान में भी इजाफा कर रही हैं। आज की नाटिका का श्रवण कर आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे, तो लीजिए प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका भाई का कर्ज।
पूनम, तुमने शिखा को उसकी फीस दे दी ना?
अरे हाँ, मैं तो उसे उसकी फीस देना ही भूल गई। आज कॉलेज से आएगी तो दे दूंगी।
जरूरी बातों पर तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी फीस कितनी जरूरी है?
कहा तो भूल गई थी, आज दे दूंगी और क्या। अगर आज के बजाय उसकी फीस वो कल भर देगी तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना?
क्या बच्चों जैसी बातें करती हो
पूनम। बच्चों जैसी नहीं,
अगर उसकी सभी सहेलियों ने अपनी अपनी फीस भर दी होगी तो क्या उसे नीचे नहीं देखना पड़ेगा?
उसमें उसकी नीचे देखने वाली बात कौन सी हो गई? और फिर लड़कों की तरह पढ़ लिख कर उसे कौन सा नौकरी करके हमें काम करवाना है? सभी लड़कियों की तरह जाना तो उसे भी है शादी करके अपने ससुराल ही।
तुम भी उन पुरानी औरतों की तरह बातें कर रही हो जो लड़की को केवल चौका बर्तन की सीमा में बांध कर रखती थी। अरे लड़की है तो क्या उसे पढ़ाने का हक नहीं है? उसे अनपढ़ रख कर क्या उसकी जिंदगी खराब कर दूं?
आप भी क्या बातें करते हैं, अब वो अनपढ़ कहाँ रही, ग्रेजुएट तो हो गई है, सब कुछ तो सीख चुकी है। अब और कितना पढ़ेगी लिखेगी?
तुम्हें क्या पता, आजकल की पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। अरे अगर आगे वो और पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है?
हाँ हाँ, मेरा क्या जाता है, पढ़ाओ उसे, खूब पढ़ाओ, पंडित बनाओ उसे, निहाल कर देगी वो। पता नहीं ये उसे इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना चाहते हैं, और वो इतना पढ़ लिख कर करेगी भी क्या?
तुम क्या सोचती हो, मैं उसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ा लिखा कर उससे नौकरी कराऊंगा और बैठकर उसकी कमाई खाऊंगा?
अगर ऐसा चाहेंगे भी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शादी करके तो शिखा अपने ससुराल चली ही जाएगी।
सबको अपनी तरह से मत समझा करो, मैं तुम्हारी तरह पैसों का लालची नहीं हूँ। मैं शिखा की कमाई खाने के लिए उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इसलिए उसे पढ़ा रहा हूँ कि शादी के बाद वह अपने पति पर निर्भर न रहे, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खड़ी।
अच्छा, और उसका पति उसकी कमाई जमा करते रहे?
तुम्हारी निगाह पैसों पर रहती है। अरे शादी के बाद अगर उसकी कमाई पर उसके पति का हक नहीं होगा तो क्या तुम्हारा हक होगा?
क्यों, तो क्या शिखा मेरी बेटी नहीं है?
क्यों नहीं है, जरूर है, लेकिन अगर शादी के बाद वह अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन अच्छा। तुम्हारा उससे ये कहना मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग के दिवालियेपन को ही दर्शाता है।
हाँ हाँ, आपको तो मेरी बातें ऐसी ही लगेंगी। अरे कभी आपने मेरी बातों की तारीफ की है? कभी ये कहा है कि पूनम तू ठीक कहती है?
अरे अगर तुम ठीक कहोगी तो ठीक कहूंगा ना, और अगर गलत बात कहोगी तो क्या उसे भी ठीक कहूंगा? मेरी तारीफ नहीं करते? अरे तारीफ लायक काम भी तो करो।
अरे बाहर वालों की तो बड़ी तारीफ करते हो।
जैसा सामने वाले का गाना है ना, वैसा मेरा बजाना। सामने वाला सही बात करेगा तो सही कहूंगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितनी फिक्र आपको शिखा की रहती है उतनी फिक्र आपने अपने बेटे पंकज की क्यों नहीं करी? शिखा की तो एक एक चीज की फिक्र करते हो आप।
तुम जानना चाहती हो ना कि मैं पंकज की फिक्र क्यों नहीं करता? तो सुनो, पंकज की फिक्र इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम उसकी फिक्र बहुत ज्यादा करती हो।
मैंने उसकी ऐसी कौन सी फिक्र कर ली है? क्या हर माँ अपने बेटे की फिक्र नहीं करती? और अगर मैंने फिक्र कर ली तो कौन सा तूफान आ गया?
तूफान ही तो आ गया है क्योंकि तुम अपनी बेटी की नहीं बेटे की फिक्र करती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि पंकज तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हें खूब कमा कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं उसके भरोसे बिल्कुल नहीं हूँ।
और जब एक दिन वो आपको संभालेगा ना, तब उस दिन आप खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे, देखना मेरी बात को।
जब ऐसा दिन आएगा ही नहीं तो फिर शर्मिंदा होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मैं नहीं देखूंगा, ये तुम देखना।
अरे
तुम
बेटा इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी की, और एक एक ये है कि कभी उसकी कोई तारीफ नहीं करते बस।
सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने और अपने बेटे के लिए मेरी तारीफ की बहुत जरूरत।
अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपकी तारीफ पाने के लिए मरी जा रही हूँ, समझे?
तुमने जो कहा उसका तो यही मतलब है, बाकी तो सब शब्दों का हेर फेर है।
अरे मैं खूब समझती हूँ आप, हम माँ बेटे को जो बिल्कुल नहीं चाहते वो सब समझती हूँ मैं।
ये तुम्हारी गलत फहमी है, उसे दूर कर लो तो अच्छा है। अगर मैं तुम्हें नहीं चाहता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहता? और अगर पंकज को नहीं चाहता तो क्या दुकान घाटे में जाने के बाद भी उसकी MBBS की पढ़ाई के लिए कर्ज लेता मैं?
तो वो तो कोई भी बाप करता है, बाप का यही तो फर्ज होता है।
हाँ केवल बाप का ही तो फर्ज होता है, बेटे का तो कोई फर्ज होता ही नहीं।
मेरा बेटा अब तक पास होता आया है, ये उसका आखिरी साल है, क्या अच्छा पढ़कर वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा है?
कौन सा अच्छा पढ़ रहा है? एवरेज स्टूडेंट है वो, एवरेज। अगर इतना ही अच्छा पढ़ रहा है तो फिर कभी गोल्ड मेडल क्यों नहीं लाता वो?
अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो गोल्ड मेडल सबको कैसे मिल सकता है? वो तो किसी एक को ही मिलता है ना?
वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारा लाडला ही वही लड़का क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे आए दिन शराब की पार्टियां उड़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम माँ बेटे क्या समझते हो, मैं कुछ नहीं जानता?
ये आप क्या कह रहे हैं, पंकज और शराब?
हाँ
हाँ उनकी पार्टियाँ जरूर होती हैं, लेकिन आपसे किसने कह दिया कि शराब की ही पार्टी होती है उसकी?
तो तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे लाडले की पीने खाने की बैठक कहाँ जमती है।
अब जवान लड़के हैं, कहीं मिलकर उठते बैठते होंगे बार बार।
काश इतना पक्ष तुमने अपनी बेटी का लिया होता। तुम्हें पता है दुकान आजकल ठीक नहीं चल रही, फिर भी उसकी पढ़ाई के लिए मैंने कर्ज लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने किताबों के खर्चे और फीस को वो मुझे बड़ा चढ़ा कर बताए और पार्टी के लिए मुझसे पैसे।
अरे अब जवान लड़के हैं तो ये सब तो करते ही हैं।
उसे ये
वो कर रहा
नहीं, उसे ये सिखा दो कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाए जाते हैं। मुझे तो पता था कि पंकज शादी के बाद यूं अलग हो जाएगा, इसलिए मैं उससे कभी कोई आशा नहीं करता था। यही कारण है कि उसके अलगाव का मुझे ज्यादा दुख नहीं है। चिंता तो बस ये है कि घर चलाने के साथ साथ कर्ज भी चुकाना है और बेटी की शादी भी करना है।
सचमुच चिंता की तो बात ही है।
चिंता की कोई बात नहीं है पापा, अभी आपकी बेटी है ना, मैंने सब सुन लिया है। आपका कर्ज भी चुकेगा, घर भी चलेगा और मेरी शादी भी हो जाएगी।
मगर कैसे बेटी?
अरे विलास अंदर आओ ना।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी।
बैठो बेटा।
नमस्ते, बैठो बेटा।
विलास ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये विलास है, मेरे साथ बैंक में ही काम करते हैं। पापा ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
कहो बेटा।
अंकल मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं जब छोटा था तब पापा गुजर गए। माँ सरकारी टीचर थी, उन्होंने ही बड़ा किया। साल भर पहले एक एक्सीडेंट में वो भी गुजर गई, वरना मेरी बात करने वही आती।
अगर शिखा तुम्हें पसंद करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है बेटा।
हाँ बेटा, हमें भी इसकी शादी की बड़ी चिंता थी।
शिखा का कहना है कि शादी के बाद भी वो आपका लिया यानी शिखा के भाई का कर्ज चुकाती रहेगी।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
नहीं बेटा ये ठीक नहीं है।
आजकल सब ठीक ही ठीक है अंकल, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम दोनों शादी के बाद आप लोगों के साथ ही रह जाएंगे। आप दोनों के रूप में मुझे माँ बाप मिल जाएंगे।
और तुम्हारे रूप में हमें बेटा मिल जाएगा, क्यों पूनम?
हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।
अब कहो पूनम, तुम्हारा बेटा पंकज लायक बेटा है या मेरी बेटी शिखा लायक बेटी है?
सचमुच शिखा मेरी बच्ची।
भाई का कर्ज। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, प्राची जैन, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।